તારીખ 10/2/1999 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 548 અને 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 838
શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 548 પૃષ્ઠ સંખ્યા 441 દૂસરા પેરેગ્રાફ છે. મારું અંતરનું અંગ એવું છે કે પરમાર્થ પ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુ જીવને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ઈચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય. પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કાંઈ પણ વાંછા રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જણાવવું થાય તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને પામી મુમુક્ષુતાનો નાશ કરે. હા, હું આપકે પાસે હિન્દી ગ્રંથ હૈ ના, તો પહેલે તો આપ જો મેરા ગુજરાતી આપ હિન્દી પઢીએ તો આપકો હિન્દી ગુજરાતી કા થોડા મિલન હોગા, ફિર મેં વિવેચન હિન્દી મેં કરૂંગા. અબ થોડા પઢતા હું તો આપકો થોડા વો મિલન કરને મેં ઠીક રહેગા ગુજરાતી હિન્દી વાલા. એમ મને નિશ્ચય રહે છે અને તે જ કારણથી તમને ઘણીવાર તમારા તરફથી કાંઈ વ્યવહારિક પ્રસંગ લખાઈ આવ્યો હોય ત્યારે ઠપકો આપી જણાવ્યું પણ હતું કે મારા પ્રત્યે તમે આવો વ્યવસાય જણાવવાનો જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરીને કરો. અને મારી સ્મૃતિ પ્રમાણે આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી, તથાપિ તે પ્રમાણે થોડો વખત બની પાછું વ્યવસાય વિશે લખવાનું બને છે તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો અને નિત્ય એવી વૃત્તિ રાખશો તો અવશ્ય હિતકારી થશે અને મારી અંતરવૃત્તિને અવશ્ય ઉલ્લાસનું કારણ આપ્યું છે એમ મને થશે. એક વાક્ય એક એટલે પડા એમને અલ્પવિરામ 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 કરકે પૂર્ણ વિરામ આખિર આયા. પૂરા પેરેગ્રાફ મેં બાદ મેં પૂર્ણ વિરામ આયા ક્યા કહેતે મેરા અંતરંગ કા અંગ એસા હૈ, એસા હી લિખા હૈ ને, અંતરંગ કા અંગ એસા હૈ. અંગ મેને યહાં અભિપ્રાય, મેરા અંદર મેં એસા અભિપ્રાય રહેતા હૈ, મને શાયદ બહાર મેં કુછ મેં નહીં બોલું યા કુછ એસા નહીં ભી કરું તો મેરા અભિપ્રાય તો જો હૈ સો હૈ. તો મેરા ભીતર મેં અંતરંગ મેને ભીતર મેં એસા અભિપ્રાય હૈ, મેરે અભિપ્રાય કે ભીતર મેં વો બાત હૈ કે કોઈ ભી મુમુક્ષુ અગર મેરે પાસ આતા હૈ તો પરમાર્થ મેને આત્મકલ્યાણ કે કારણ સે આતા હો તો જરૂર ઉસકો મેરે પ્રતિ આત્મકલ્યાણ કે પરમાર્થ કે મેને આત્મકલ્યાણ કે હેતુ હી કી ઈચ્છા રહે તો હી ઉસકા શ્રેય મેને કલ્યાણ હો હવે પર ઉસકો ઠીક હૈ એસા હોના ચાહીએ કે અગર કિસી કો મેરે પાસ આના હૈ તો આત્મકલ્યાણ કે કારણ સે આના ચાહીએ પર આત્મકલ્યાણ કે કારણ સે કોઈ આયેગા તો જરૂર ઉસકા આત્મકલ્યાણ હોગા. ક્યો કે ઉસ વિષય મેં મેરી માસ્ટરી હૈ. અગર ઇસ વિષય મેં આપકો કોઈ તકલીફ હૈ દિક્કત હૈ તો વો દિક્કત દૂર હો જાયેગી, વો બાત જરૂર હૈ. ઇસલિયે આના હૈ તો આત્મકલ્યાણ કે કારણ સે આવો એવી ઈચ્છા છે આવો, જરૂર આપો, આપકા કલ્યાણ હોને કા બનેગા, આપ ઇસ ઈચ્છા સે આયે તો બનેગા હી બનેગા, ઉસમે કોઈ હમકો સંદેહ નહીં હૈ, શંકા નહીં હૈ. પરંતુ દ્રવ્ય મેને પૈસા ઇધર, પૈસા કે કારણ સે કુછ ભી વાંછા રહે, પૈસે કી વાંછા હો, અથવા પૈસો કે કારણ સે વ્યવસાય મેને વ્યાપાર ધંધા નોકરી એસે વિષય મેં કુછ મેરે કો બતાના હોવે, તણાવ ઉઠાય મેને બતાને કા હોવે, તો અનુક્રમ સે મેને ભવિષ્ય મેં યહ જીવ મુમુક્ષુતા કા નાશ કર દેગા, કે મુમુક્ષુતા છૂટ જાયગી. ક્યો? કે પૈસા પ્રાપ્ત કરને કા મલિન ભાવ હૈ, મલિન ભાવ કો યહાં મલિન વાસના કહી હૈ. ऐसा हमको निश्चय रहता है, हमारा अभिप्राय पूर्वक ही निश्चय है हमारा. ये बहुत प्रासंगिक बात है सुभाष भाई और कृपालु देव के बीच की बात. तो प्रासंगिक है, मैंने एक प्रसंग ऐसा हुआ है सुभाष भाई का आर्थिक कारण का, इसलिए वो बात निकली है. પરંતુ સભી મુમુક્ષુ કો ઇસમે સે શિક્ષા મિલતી હૈ, સભી કો શિક્ષા મિલતી હૈ. કિસી ભી જ્ઞાની કે પાસ, જ્ઞાની કા મુમુક્ષુ કે પાસ ભી યે અપેક્ષા નહીં રખની ચાહીએ, ન વ્યવસાય કી રખની ચાહીએ, ન કોઈ પૈસે કી રખની ચાહીએ, ક્યોંકિ વો આત્મકલ્યાણ સે વિરુદ્ધ હૈ, ઇસલિયે વો અપેક્ષા નહીં રખની ચાહીએ. ઓર ઇસી દ્રષ્ટાંત સે ઓર ભી સિદ્ધાંત હૈ કે જહાં ધાર્મિક પ્રસંગ હૈ, જ્ઞાની કે પાસ ઓર મુમુક્ષુ કે પાસ કોણ સા પ્રસંગ હૈ? ધાર્મિક પ્રસંગ હૈ ઓર ધાર્મિક સંબંધ હૈ મિલને જુલને કા. તો વહાં સાંસારિક પ્લેટફોર્મ નહીં હૈ, ઇસલિયે ધંધા વ્યાપાર પૈસે કી બાત તો છોડો, દૂસરી ભી કોઈ સાંસારિક ચર્ચા નહીં કર હોની ચાહીએ, ક્યોંકિ ધર્મ તો આત્મકલ્યાણ કે લીએ હૈ. તો આત્મકલ્યાણ કા જો સંબંધ હૈ ઓર પ્રસંગ હૈ, વહાં આત્મકલ્યાણ કી ચર્ચા હોના ઇતની મર્યાદા હોવે તો વો કામ અચ્છી તરહ હો સકતા હૈ. ક્યો? કે સંસાર કે પ્રસંગ ઓર સંસાર કે પદાર્થો કી કોઈ અંત નહીં હૈ. પૈસા ચાહીએ, કિતના ચાહીએ પૂછો આપ કિસી સે, આપકો કિતના પૈસા ચાહીએ? અનલિમિટેડ હૈ. કંપની તો બનાયેગા લિમિટેડ, ઓર પૈસા ચાહીએ અનલિમિટેડ, યે અભિપ્રાય સબકા પડા હૈ. તો ઇસ બાતો કા, એસી ચર્ચા કા કોઈ અંત હી નહીં આયેગા. અગર હમ ઇસ બાત કા અવકાશ દેતે હૈં તો ઉસમે સે નિકલના હી મુશ્કિલ હો જાયેગા. ઓર યે મલિન ભાવ હૈ, અશુભ ભી હૈ ઓર મલિન ભી હૈ. ઇસલિયે ધાર્મિક પ્રસંગ મેં યે ઉસકા પ્રવેશ નહીં હુએ એસી મર્યાદા રખના, યહી હમારે લિયે આત્મકલ્યાણ કા એક સહી નિયમ હોગા. ઓર યે પોલિસી હમ લોગો કો હમારી બના લેની ચાહીએ, યે હમારી નીતિ રીતિ હોની ચાહીએ.
સમાજ મેં તો પરમાત્મા ઓર વ્યવહાર દોનો કો બેલેન્સ સે રખેગા તો સમાજ ચલેગા.
સમાજ ચલાના મતલબ ક્યા?
વ્યવહાર व्यवहारिक प्रसंग है उसमें भी परमार्थ के हेतु से ही व्यवहार प्रसंग है, तो क्या
पारमार्थिक व्यवहार और सांसारिक व्यवहार दो प्रकार के व्यवहार हैं। पारमार्थिक व्यवहार की कोई मनाही नहीं है, सांसारिक व्यवहार का यहाँ निषेध किया जाता है। सांसारिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। वात्सल्य में, वात्सल्य की बात एक अलग है, वो प्रकरण एक अलग है। तो वात्सल्य में क्या होता है, वात्सल्य का एक पहलू है, दो पहलू नहीं है। हम दूसरे मुमुक्षु के प्रति वात्सल्य रखे वो बात हमारे लिए ठीक है, लेकिन दूसरा मुमुक्षु हमारे के प्रति वात्सल्य रखे वो बात ठीक नहीं है।
एक तरफ ही नहीं
है, ये वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक है। हमको वात्सल्य रखना है लेकिन दूसरे का वात्सल्य की अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। अगर हम दूसरे का वात्सल्य की अपेक्षा रखते हैं तो ये हमारी सांसारिक अपेक्षा हो गई, वात्सल्य की नहीं रही। लेकिन हम वात्सल्य रख सकते हैं और हम कर भी सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो बात सही रूप से समझना चाहिए। वो सांसारिक हो गया, अपेक्षा रखे तो संसारी बात हो गई। अनुकंपा एक दूसरी बात है, वात्सल्य दूसरी बात है। वात्सल्य है वो प्रेम है, प्रेम का दूसरा नाम वात्सल्य है। तो अपने हमारे शास्त्र में दृष्टांत है वात्सल्य का, गाय और बछड़े का। गाय को अपने बछड़े के प्रति, बछड़ा ही कहता है ना, बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है, उसको चाटती है ना, तो वो उस तरह से वात्सल्य रखना चाहिए। करुणा है वो एक बात अलग है, कि किसी को, किसी का दुख नहीं देखने से, नहीं देख सकने से जो भाव आती है, उसको आता है, उसको करुणा कहते हैं। वो करुणा वात्सल्य है वो साधर्मी के प्रति होती है, और करुणा प्राणी मात्र के प्रति होता है। कोई भी प्राणी के प्रति करुणा आती है, एक पिल्लू होता है तो इसके प्रति भी करुणा आ सकती है, अगर उसको कोई दुख का, दुख से चिल्लाना होता है तो। हाँ, वो तो क्या है कि उसमें निष्कांत लेना है, शास्त्र में ऐसा दृष्टांत है। प्रमोद मैत्री और प्रमोद, वो अलग अलग, सब भाव अलग अलग है। मैत्री, प्रमोद, अनुकंपा, सम, संवेद, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, मैत्री, प्रमोद, सब अलग अलग प्रकार के भाव हैं। तो ये तो सब प्रकरण लंबा चौड़ा बहुत है, कई प्रकार के भाव हैं, अपने अपने स्थान में उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ तो जो प्रकरण चलता है वो उतना चलता है कि हमें सांसारिक अपेक्षा से धर्म के क्षेत्र में किसी मुमुक्षु के साथ और ज्ञानी के साथ हमें प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, और हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और वो इस अपेक्षा पूर्वक हमें प्रवृत्ति भी नहीं करनी चाहिए, हमारी इच्छा और वांछा भी नहीं होनी चाहिए। अगर रहती है तो उसमें मुमुक्षुता का अभाव होने का अवसर आ जाएगा। क्रमशः मैंने आगे जा करके मुमुक्षुता छूट जाएगी, ये बात हो जाएगी। और ऐसा बहुत प्रसंग बना भी है, बनता भी है, बहुत अनुभवपूर्ण ये बात लिखी है। कोई भी सांसारिक अपेक्षा पदार्थ की अपेक्षा नहीं चाहिए, इसलिए तो बोला कि ये तो बात दो ही लिखी है दृष्टांत रूप से। कोई भी सांसारिक अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई बात सवाल और वही कारण से आपको बहुत बार आपके ओर से कोई व्यावहारिक बात प्रसंग की बात लिखने में आई है तब हमने थपका दिया है। क्या दिया है? थपका दिया है। ज्ञानी जब थपका देते हैं एक बहुत सौभाग्य का प्रसंग है थपका मिलने वालों के लिए। क्यों कि इतनी करुणा उसको आई, थपका देने का भी बात आई तो उसका उसका एक हित बुद्धि से तो थपका देते हैं। खुद को तो कुछ चाहिए नहीं, खुद को तो कुछ अपेक्षा है ही नहीं, फिर क्यों थपका दे? फिर भी थपका अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि उसके प्रति प्रेम है तो थपका देते हैं। प्रेम नहीं है तो क्यों देंगे थपका? ऐसे ही सोचेंगे हमको क्या, चलो इसका नुकसान वो भोगेगा, इसका नुकसान उसको होगा, हमको क्या लेना देना है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको और दुख हो जाएगा, हमको क्यों दुख हो, ऐसा करना चाहिए, उदास हो जाएंगे। लेकिन थपका कब देंगे कि उसके प्रति प्रेम होगा तभी देंगे। तो इसका प्रेम मिलना ये भी एक सौभाग्य का बात है, इसलिए इस तरह से लेना चाहिए। जिसको भी लेना है उसको इस तरह से लेना चाहिए। हाँ वो तो है ही, होनहार अच्छी है उसको तभी तो थपका मिलता है। दूसरा, ज्ञानी को भी प्रेम होने से इतना विश्वास आता है कि मैं थपका दूंगा तो उसका कल्याण होगा, उसके परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, परिणाम में सुधार आएगा, परिणाम में सुधार आएगा, बिगड़ेगा नहीं परिणाम, ऐसा विश्वास के साथ वो थपका देते हैं। और होता भी ऐसा ही है, वरना वो थपका देते नहीं, क्यों जरूर, इसको क्या जरूरत है थपका देने की, कोई जरूरत नहीं। जरूरत कब लगी कि इसके प्रति प्रेम है तब जरूरत लगी कि इस जीव का नुकसान नहीं हो, इतना उसके प्रति उनको भाव आया है तभी तो कहते हैं।
एक बात और आती, उस जीव में कुछ मुमुक्षुता है तभी थपका मिल रहा है, अगर मुमुक्षुता नहीं है तो थपका भी नहीं मिलेगा।
तो पात्रता है तभी तो प्रेम आता है, प्रेम कब आता है? पात्रता है तब तो आता है ना, योग्यता है तब तो आता है। तो योग्यता में तो बात उल्टी नहीं पड़ती, सूटी पड़ती है। इसलिए हमने थपका देकर के दर्शाया है, बताया था कि मेरे प्रति आप ऐसे व्यवसाय का बात बताने का लिखने का जैसा हो सके वैसे नहीं करो, जरूर ऐसा नहीं करो। और मेरे स्मरण के अनुसार आपने वो बात ग्रहण कर ली थी, ऐसा मुझे स्मरण है कि मेरी बात आपको ग्रहण हो गई थी, फिर भी उसी के अनुसार थोड़ा बात थोड़ी थोड़ा टाइम तो चला, फिर व्यवसाय के भी इसी से में आपने लिखा है। हाँ, बीच में आपने बात ग्रहण कर ली थी, हमको बराबर पता चला है कि आपने अच्छी तरह पकड़ लिया उस बात, और उस बात को नमस्कार भी किया था, ग्रहण किया। तो फिर भी उन लोग ने लिखना चालू हो गया। तो आज के मेरे इस पत्र से विचार करके अवश्य इस बात का, मैंने लिखने की बात का विसर्जन कर देना, आइंदा मत लिखना है, आइंदा हमको ऐसी बातें मत लिखना, हमको सब ध्यान में है, सब ख्याल में है। इसका मतलब वो भी है कि आपको आत्मा की चिंता होनी चाहिए, संसार की प्रतिकूलता की नहीं होनी चाहिए। ये संसार के प्रतिकूलता की जो चिंता होती है वो अनात्मा की चिंता है, आत्मा की नहीं है। जिसको अनात्मा की चिंता होती है उसको आत्मा की चिंता नहीं होती, और जिसको आत्म कल्याण के लिए आत्मा की चिंता होती है उसको अनात्मा की चिंता नहीं होती। ऐसी बात है। इसलिए आत्म कल्याण का हेतु को मुख्य करके ये बात लिख रहे हैं। इसमें आशय है, पारमार्थिक आशय है। खुद को तो ऐसी बात में रस नहीं था और बोझा भी लगता था, लेकिन फिर सिर्फ अपना बोझा उतारने के लिए नहीं लिखते थे, सुभाष भाई का कल्याण होवे यही दृष्टि से लिखते थे। आपको ऐसी बात लिखने की बात ही विसर्जन कर दो, छोड़ दो इस बात, कभी नहीं लिखते हैं। और हमेशा ऐसी वृत्ति रखना, हमेशा ऐसी नहीं लिखने की वृत्ति रखना, तो अवश्य हितकारी होगा। देखो क्या लिखा है, हित के कारण से लिखते हैं, आपका हितकारी होने के कारण से ये बात है। और मेरी जो अंतर्वृत्ति है, मेरा जो अंतर का अभिप्राय है, उसको अवश्य आपने उल्लासित कर दिया है, मेरे अभिप्राय को सपोर्ट किया है, हमको खुशी होगी। अगर आप ऐसी बात नहीं लिखेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, है ऐसा हमको होगा, तो हम खुशी हो गए वैसा ही आप करेंगे, हम नाराज हो वैसा आप कैसे क्यों करेंगे, ऐसा करके लिख दिया है। बीजा कोई पण सत्संग प्रसंग में एम करे तो मारू चित्त बहु विचार में पड़ी जाए छे, कि गभराई छे, केम के परमार्थ ने नाश करनारी आ भावना आजीव ने उदय में आवी। क्या कहते हैं, तो कोई भी जीव, दूसरा कोई भी जीव सत्संग प्रसंग में आता है और ऐसा करता है, मैंने सांसारिक प्रवृत्ति करने लगता है, तो मेरे चित्त में बहुत विचार हो जाता है, अरे ये क्या करता है, इधर आके ये क्या करता है, ये कोई सांसारिक प्लेटफॉर्म नहीं है, सांसारिक काम का ये कोई क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए, हमको उनको विचार चल जाता है उस पर ज्यादा, चित्त विचार में पड़ी जाए, मैंने विचार चल जाता है वो। और घबराहट भी होता है, घबराहट कहाँ होता है, नुकसान होता है वहां घबराहट होता है, तो दूसरे को नुकसान होता है इसका घबराहट होता है, अरे 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 वो बेचारा, जैसे कोई गिर जाता है तो घबराहट होता है ना, अरे अरे वो गिर जाएगा, घबराहट होता है ना, कोई ऊपर से गिरता है तो बहुत लगता है, लग जाता है। उस तरह से इसका गिरने का देखते हैं तो घबराहट भी होता है, करे गिर जाएगा ये तो। एक तो क्या है, बहुभाग लोग तो संप्रदाय छोड़ करके ज्ञानी के समीप जाते नहीं। संप्रदाय में लोक लज्जा, लोक दृष्टि, लोक संगना, इज्जत, ये सब बातें बहुत मुख्य हो जाती है। लोग संप्रदाय नहीं छोड़ पाते। संप्रदाय छोड़ करके जब कोई ज्ञानी के पास आता है तो एक प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का भाग्योदय है, पुण्योदय है, प्रारब्ध का अच्छा उदय है, ऐसा समझना चाहिए। अब ऐसा अच्छा प्रारब्ध उदय है, उसमें भी वो संसार को घुसाता है, संसार की बातों को घुसाता है तो नुकसान कर जाता है। यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि परमार्थ को, इन्हें आत्मकल्याण को नाश करने वाली ऐसी दुष्ट भावना इस जीव को उदय में आ गई। ऐसा कैसा उदय, उसको उदय में ऐसा भाव क्यों उसको उदय हुआ? इधर तो नहीं होना चाहिए था, हमारे पास तो नहीं होना चाहिए था, फिर उसको क्यों हुआ? कृपालु देव के विषय में बहुत सी बातें चलती थी, वो तो हर एक के लिए चलती है, कि अच्छी भी चलती है, बुरी भी चलती है। तो अच्छी बातों में ऐसे भी चलते थे कि इसके पास कोई विद्या है, कोई चमत्कार है, कोई लब्धि है, रिद्धि सिद्धि है, ये भी चलती थी। तो कोई संसार के वांछो भी होते हैं, उस मलिन भाव लेकर के भी आ जाते हैं। एक घटना ऐसी घटी थी, एक आदमी तो नया नया आया था लेकिन बहुत चिपकता था। वो हो सके उतना ज्यादा संग करने का उसकी प्रवृत्ति में कृपालु देव ने देखा। जब बहुत चिपकता है तो दूसरी जगह से उसको हटना पड़ता है, टाइम तो देना पड़ता है ना। तो दूसरी जगह टाइम नहीं देवे तब तो चौंट सकता है, चिपकता है। तो देखा कि चिपकता तो बहुत है, एक दिन उसको बुला दिया एकांत में। क्या समझ करके चिपकते हो बताओ, क्या बात है, मतलब तुम्हारा अभिप्राय क्या है चिपकने के पीछे? तो उसने कोई जवाब तो अच्छा दिया कि मेरे को ऐसा लगा है कि आपके द्वारा ही मेरा आत्मकल्याण होगा या हो सकता है, इसलिए मैं चिपकता हूँ। वाकई ऐसा है, कोई और तो गड़बड़ नहीं है, वाकई ऐसा ही है। जब तो ठीक है, जब तो ठीक है, मतलब उसको कोई मना ही नहीं किया, निषेध नहीं किया। अगर उसकी कोई दूसरी बात हो तो बोले थे कि मत आना, तुम इधर आना ही मत, हमारे पास काम नहीं है तुम्हारा, हम कुछ किसी को कुछ देते नहीं, कुछ चमत्कार करते नहीं, कुछ देते नहीं, कुछ बात हमारे पास ऐसे कुछ है भी नहीं देने के लिए, ऐसे ही कह देते। आत्मकल्याण के लिए आता है तो उसके लिए तो कुछ सवाल ही नहीं रहता है। अगर कोई जीव का भी आत्मकल्याण हो जाता है तो इससे बढ़िया कौन सी बात है? जब आपने जभी व्यवसाय के विषय में लिखा होगा तभी तभी जभी जभी आपने विषय व्यवसाय के विषय में लिखा होगा तभी तभी हमको प्रायः ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है, हमको बहुत विचार आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है आपको, आपको ऐसा क्यों होता है, और हमको घबराहट भी होता है, अरे आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो, पारमार्थिक नुकसान हो जाएगा, इसका क्या क्या होता है, दर्शन में बढ़ जाता है, मिथ्यात्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिकूलता से दुख नहीं, अनुकूलता से सुख नहीं, और प्रतिकूलता की चिंता में संसार की प्रवृत्ति तो संसारी सभी जीव करते हैं, लेकिन ज्ञानी के पास आकर भी वही प्रवृत्ति जब करते हैं तब तो हद हो गई इस बात की, बहुत तीव्र सुख दुख की अभिप्राय हो जाएगा, दृढ़ता हो जाएगा, संसार प्रतिकूलता अनुकूलता में सुख दुख का अभिप्राय तीव्र हो जाएगा, बहुत नुकसान का कारण हो जाएगा, यानी मिथ्यात्व ज्ञान दर्शन में तीव्र हो जाएगा, इसलिए घबराहट होता है। तथापि आपकी वृत्ति विशेष अलग होने के कारण से, सामान्य जीव जैसी बात आपकी नहीं है, आपकी वृत्ति कुछ अलग प्रकार के, आपकी योग्यता को मैं जानता हूं अच्छी तरह, इसलिए कुछ योग्यता का स्तर क्रॉस करके आगे चल गए थे, गिरने का प्रसंग कम होता है, परंतु फिलहाल तुरंत तुरंत के प्रसंग पर से, फिलहाल के जो अभी बार बार जो प्रसंग आता है उस पर से आपने भी यह घबराहट के लगभग के घबराहट का कारण दिया है हमको, घबराहट तो नहीं करा है लेकिन घबराहट के लगभग जो घबराहट हो गए ऐसी अभिव्यक्ति है, देखो परिणाम जितना परिणाम है उतना ही एग्जैक्ट व्यक्त करते हैं, घबराहट नहीं हुआ है लेकिन घबराहट के समीप होने वाला घबराहट तो हुआ है, ऐसा ऐसा कारण दिया है, ऐसा चित्त में रहता है। अब देखो क्या लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है, रवजी भाई के कुटुंब के लिए, रवजी भाई मैंने अपने पिता से, रवजी भाई के कुटुंब के लिए, परिवार तो रवजी भाई का था ना, कुटुंब परिवार तो रवजी भाई का था, खुद का कुछ होता थोड़ा बहुत तो उनको अपना अपनापन था ही नहीं, रवजी भाई के कुटुंब के लिए जिस तरह से व्यवसाय मुझे करना पड़ता है, करने का अभिप्राय नहीं है, करना पड़ता है, एक सजा भोगनी पड़ती है ना, ऐसी बात है, ठीक उस तरह आपके लिए मुझे व्यवसाय करना होवे, करना पड़े नहीं करना होवे, तो भी मेरे चित्त में अन्य भाव आएगा नहीं, अन्य भाव मैंने पारका बनाएगा नहीं कि मैं दूसरे के लिए करता हूं, मैं अपनापन अनन्य भाव से ही मैं आपके परिवार के लिए भी मेरे मुझे व्यवसाय करना पड़े तो मैं कर लूंगा, देखो कितना वात्सल्य है, मेरे पिताश्री का जो परिवार है उसके लिए तो मैं करता है, मेरे मुझे करना ही पड़ता है, अगर आपके परिवार के लिए करना पड़े तो मुझे ऐसा ही लगेगा, इसमें क्या है, मुझे अंतर नहीं दिखता है कि मेरा परिवार है, आपका परिवार मेरा नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा, अपन नहीं बोलते कि आपका बेटा वो मेरा बेटा, आपकी बेटी वो मेरी बेटी, बोलते कि नहीं बोलते? बस ठीक उस तरह संसार में तो बोलते हैं, करते हैं अलग बात होती है, कभी बोलने वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कृपालु जी की बात एग्जैक्ट जैसे परिणाम थे वैसे ही वो बोलते थे कि हमको हमारे परिवारों आपके परिवार में कोई जुदाई नहीं है, हमारे मन में हमारे अभिप्राय में कोई जुदाई नहीं है, हमको हमको मजदूरी करनी पड़े व्यवसाय करना पड़े तो हम कर लेंगे एक दफा, इसमें कोई हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम दूसरे के लिए करते हैं। तो ज्ञानी होने के बावजूद भी मुमुक्षु के प्रति कितना अनन्य भाव है कि उनको परायापन नहीं लगा कि मैं दूसरे का ये करता हूँ, कर लेंगे, उतना अभिप्राय में तैयारी होती है। क्यों? तो जब इधर करते तो इधर के लिए क्यों नहीं? वास्तव में तो थोड़ी बात और भी है, वो इधर नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, लेकिन सांसारिक अपना परिवार जो कहलाने वाला है अपना प्रारब्ध के कारण, इससे अधिक स्नेह मुमुक्षु के प्रति होता है ज्ञानी को। क्या? अपने परिवार से अधिक स्नेह होता है, वात्सल्य का गुण ऐसा होता है। ये तो संसारिक प्रेम तो स्वार्थ का होता है, जबकि ज्ञानी को स्वार्थ नहीं है, उनको तो एक प्रारब्ध का उदय है इसलिए करना पड़ता है, लेकिन मुमुक्षु के लिए तो अवश्य कर लेंगे, परिश्रम करेंगे ही करेंगे, वो एक वात्सल्य का कारण होता है। इसलिए हमारे चित्त में अन्य भाव नहीं आएगा, परंतु आप दुख सहन नहीं कर सकते हो तथा व्यवसाय के लिए हमको लिखते हो, वो बात किसी भी प्रकार से श्रेय रूप लगती नहीं। आप मेरे पिताश्री हमको लिखे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो सांसारिक संबंध है। मेरे भाई भी लिखेगा कि आप ठीक तरह से ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दे करके व्यवसाय करिएगा, वो हमको नहीं लगेगा। हमारे लिए कुछ वो करेगा, वो भेजेगा, वो करना सब करेंगे तो हमको नहीं है। लेकिन आपको कोई अपेक्षा रहती है, हम करें अलग बात है, वन वे ट्रैफिक है, आपको नहीं रहनी चाहिए, ये बात है। तो उसको श्रेय रूप नहीं लगता है, आपका कल्याण अकल्याण की बात हो जाती है, कल्याण में बाधा पहुंचती है कि बाधक है कल्याण में। क्योंकि रवजी भाई को ऐसी परमार्थ की इच्छा नहीं है और आपको है, बात वो है कि घर वाले तो कहेंगे कि हमको ये ला दो, हमको ये कर दो, हम अपेक्षा रखेंगे, परिवार वाले तो अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई आत्मकल्याण का संबंध है ही नहीं। परिवार वालों को तो कोई आत्मकल्याण का संबंध नहीं है, और आपको तो हमारे साथ आत्मकल्याण का संबंध है, इसलिए आप कोई सांसारिक अपेक्षा रखते हो तो आपको नुकसान होगा, जबकि उन लोगों को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्यों? उनको तो सांसारिक संबंध है, आया समझ में? ऐसी बात है। इसलिए आपको यह बात पर जरूर स्थिर मैंने मक्कम होना, स्थिर होना मैंने दृढ़ होना, शायद आप हमको कोई अपेक्षित बात संसार के अपेक्षा वाली बात नहीं लिखेंगे। हमको जरूरत लगेगी हम सामने से करेंगे, और उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि हमको ये क्यों करना, आपका क्यों हम करें, ऐसा कोई नहीं लगेगा। प्रेम से करेंगे, वात्सल्य से करेंगे, उसमें कोई हमको अब परायापन बिल्कुल लगने वाला नहीं है। इस बात का विशेष निश्चय रखिएगा। कहीं आप पत्र अधूरो छे, ये घणू करीने आवती काले पूरो थशे, एम करीने एमने બીજો એજ ના અનુસંધાનમાં જે પત્ર લીખો છે એ 550 નંબરનો લીખો છે, એ વિસ્તારથી પાછો લીખો છે, કેમ કે વિચાર તો એમને ઘણા એવા છે. આ પત્ર જો કે મોટો છે, વિચાર તો ઘણા એવા છે એમને. આ છે માર્ક સર્વદ 9 અને આ માર્ક સર્વદ 11, એક દિવસ છોડીને પછી લખવાનો છે. શુક્રવાર અને પછી રવિવાર હે ઘણી સંભાળ ઘણી લીધી, સ્વાભાવિક જ છે. વચ્ચે એક પત્ર 549 માં પણ સુભાગભાઈ ઉપરનો છે, પણ એ તારીખ કોઈ કારણસર એમણે નાખ્યો છે. અનુસંધાન તો એમણે 550 સાથે છે, એટલે ફૂટનોટમાં એ વાત નોટ કરેલી છે. માકુભાઈ વગેરેને જે ઉપાધિ કાર્ય કરવા વિશે અધીરજથી આર્ત જેવા પરિણામથી પરની આજીવિકાનો ભંગ થાય છે તે જાણ્યા છતાં રાજકાલ કાજમાં અલ્પકારણમાં વિશેષ સંબંધ કરવા યોગ્ય નહીં તે થાય એવું કારણ છતાં, જેમાં તુચ્છ એવા દ્રવ્યાદિનો પણ વિશેષ લાભ નથી છતાં તે માટે ફરી લખવાનું થાય છે, કે શું યોગ્ય છે? તેવા વિકલ્પને તમ જેવા પુરુષો મોડો નહીં પાડી શકે તો આ દુષ્મકાળમાં કોણ સમજીને સમાઈ રહેશે? સુભાગભાઈને નથી લખ્યું, માતુભાઈને લખ્યું છે. સૌભાગભાઈ માકુભાઈ ને લખ્યું છે એમ લાગે, એમ લાગે છે. માકુભાઈ વગેરે ને જો ઉપાધિ કાર્ય કરને કે વિષય મેં અધીરજ છે લિખા હે, કે કેસે લિખા હે? ઉતાવળી મેં લિખા હે, આપને આર્ત જૈસે પરિણામ સે લિખા હે. दूसरे की आजीविका का भंग होता है ऐसा जानने पर भी लिखा है. राजकाज में अल्प कारण में विशेष संबंध करवा योग्य नहीं, मैंने पॉलिटिक्स में तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए के थाय, फिर भी ऐसा होता है, ऐसा कारण होने पर भी, और जिसमें तुच्छ ऐसा द्रव्यादि, पैसा तो तुच्छ है ऐसा लिखा है क्या? तुच्छ ऐसा द्रव्यादि, पैसे तो तुच्छ है, उसका भी विशेष लाभ नहीं है. फिर भी इसके लिए बार बार लिखने का होता है तो क्या वो योग्य है? मैंने बिल्कुल योग्य नहीं है। ऐसे विकल्प को आप जैसे पुरुष फीका नहीं पड़ेगा, कमजोर नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो इस दुष्म काल में कौन सा जीव ऐसा है जो समझ करके उपशम होगा, समय रहेगा? आपको तो बिल्कुल दूसरों को ऐसी बात मत लिखो। कृपा रूप उन्हें खबर पड़ी उसे कि बीजा कोई नहीं साथ है, वो पत्र व्यवहार चाहो से सुभाग भाई ने तो जरा जोर से ठप्पा एक पे सो जोर से ठप्पा एक पे लिखू से કેટલીક રીતે નિવૃત્તિને અર્થે અને સત્સમાગમને અર્થે તે ઈચ્છા રાખો છો, તે વાત લક્ષમાં છે. એમાં શું છે કે આર્થિક પ્રતિકૂળતા નહીં હો તો નિવૃત્તિ કે લીએ ઠીક રહેગા ઓર સત્સમાગમ ભી હમ કર સકેંગે કર પાએંગે ઇસ હેતુ સે આપ ઈચ્છા રખતે હો વો બાત હમારે લક્ષ્ય મેં હૈ. तथापि उतनी ही जो इच्छा होती तो इस प्रकार के जो अधीरज है आदि जो भी प्रकार परिणाम में है ऐसा ऐसा नहीं होता. इसमें उतनी इच्छा नहीं है और भी थोड़ी गड़बड़ है. सिर्फ निवृत्ति और सत्समागम वाली बात नहीं है, साथ साथ दूसरी भी बात है. तो पकड़ते हैं क्या आप बात करते हो सत्समागम मिले निवृत्ति हो जाए, लेकिन अकेली वो बात नहीं दिखती है. अनुकूलता में इष्टपणा, अनुकूलता में ठीकपणा भी दिखता है और परिवार वाले को भी सुविधा हो जाए वो सब परिवार की प्रतिबंध भी दिखता है. माकूभाई वगैरह को भी हाल फिलहाल उपाधि के संबंध में लिखना नहीं चाहिए, आप उसको भी मत लिखिएगा. उनको तो नहीं लिखो, दूसरे को हमारे वो इनके पार्टनर थे सोपाल देव के, उसको भी मत लिखो. जैसा होगा उसको देखते रहना वही योग्य है. जो भी होगा देखते रहो क्या होता है. देखो मैंने परिणाम को विषम भाव में मत ले जाओ, विषम परिणाम मत करो. इस विषय में जितना ठपका लिखना चाहिए नहीं लिखा है तो भी विशेषता से इस ठपका का विचार करना. हम तो ज्यादा लिख देते हैं लेकिन नहीं लिखा है तो भी लिखा है ऐसा समझ करके विचार करना है. जोर से ठपका दिया है ऐसा समझ लेना है, ऐसा करके ठपका दे दिया है तो उसको बचाना को चाहते थे, वो गिर जाए ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जब भी ठीक लगा वैसा बोल दिया है.